सबके बैठ सामने दिल वाला
प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है
बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है
ओम शांति। तो अभी का हमारा विषय है मिथिला नरेश जनक और ये टॉपिक ये विषय लेने की प्रेरणा हमें आप सबको देखकर आई। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से आए हैं? बिहार की धरनी से आए हैं। फिर वो स्वागत गीत में भी उन्होंने मिथिला का वर्णन किया। फिर अति जलवृष्टि भी हो रही है। ये तीनों बातों को देखकर हमें प्रेरणा आई कि मिथिला नरेश जनक से हम कुछ सीखें पुरुषार्थ के लिए। तो क्या सीख सकते हैं हम मिथिला नरेश जनक से? तो मिथिला नरेश जनक की पुत्री मिथिलेश कुमारी मैथिली अर्थात जानकी अर्थात सीता, सीतामढ़ी है ना बिहार में, एक वो जन्म भूमि का हिस्सा मतलब शास्त्रों के अनुसार जो कहानियां हैं वो भूमि का हिस्सा जहां सीता का जन्म हुआ और वो भूमि का हिस्सा जहां सीता पृथ्वी के गोद में समा गई। दोनों को सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो सीता के जन्म से संबंधित बात जो है, जो कहानी जो आती है शास्त्रों में, वो ऐसी आती है कि राजा जनक जो मिथिला के नरेश हैं, उनके मिथिला राज्य में कई वर्षों से अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, खेती नहीं हो रही है। अब तो नेचुरल है, परेशानी का विषय बन गया। नहीं, आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि दैवी पद पाने के लिए कौन से विघ्न आते हैं, चेक करो कि दैवी गुण जो धारण करने हैं हमें उसमें विघ्न कौन से आ रहे हैं और उन विघ्नों की उड़ाने की युक्तियां सोचो, है ना। तो डेफिनेटली उनको भी लग रहा था कि ये कैसी परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए। तो कहते हैं देवर्षि नारद ने उन्हें सलाह दी कि आप एक यज्ञ कीजिए, क्योंकि यज्ञ जनरली जलवृष्टि के लिए किए जाते हैं। तो आप यज्ञ कीजिए और उसी देवर्षि नारद के कहे अनुसार यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति में उन्हें क्या करना था, भूमि अकाल ग्रस्त भूमि का जो क्षेत्र है वहां पे उन्हें हल चलाना था। तो जब वे हल चलाने गए तो वहां पे और एक सावधानी दी गई, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ का नियम होता है पति पत्नी साथ में होते हैं, है ना, यज्ञ में हवन कुंड में। तो यज्ञ तो हुआ, फिर हल चलाने के लिए उठे तो वहां उनको फिर सावधानी दी गई, पत्नी को साथ में ले चलो, सुनैना जो उनकी पत्नी है। फिर दोनों साथ साथ चले हैं और फिर जैसे हल चलाया है, और हल जब चलाया है तो चलाते 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 एक जगह वो हल क्या हो गया, अटक गया कहीं, और अटक गया तो आगे बढ़े ही नहीं, और तब जाके उस भूमि के उस हिस्से को खोद करके पाया गया कि सोने की डलिया में बालक शिशु बालिका। और चूंकि बताते हैं कि मिथिला नरेश जनक को कोई संतान भी नहीं थी, तो कहानी के अलग अलग वर्शंस आते हैं। कोई कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है, और कोई कहते हैं कि अकाल पड़ गया था तो उस अकाल से निपटने के लिए यज्ञ किया। तो जैसे ही, तो दोनों बातें यहाँ पे हो रही है कि संतान नहीं थी और उस जमीन पर जो खोदा गया तो क्या मिला, शिशु बालिका मिली। और डेफिनेटली चूंकि संतान नहीं थी तो उसे उन्होंने अपने संतान के रूप में भी स्वीकार किया। न सिर्फ इतना, जैसे ही उन्हें उसमें से उठाया, अपनी गोद में लिया है, ऊपर से जल वृष्टि भी आरंभ हो गई। अब ये है कहानी। ऐसे देखा जाए आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर डाली, किसी को बच्चा न हो रहा हो और कहे जमीन में से निकल आएगा, कभी हो सकता है ऐसे? तो जितनी भी शास्त्रों में कहानियां हैं, इनके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। एस इट इज भी हम ले लें तो उसका भाव वहां तक है, लेकिन अगर इसकी गहराई को समझे, इसकी सूक्ष्मता में उतरे, तो हमें जीवन में पुरुषार्थ क्या करना चाहिए वो इन कहानियों से समझ में आता है। तो क्या पुरुषार्थ की बात है इसमें, कि कहा कि अकाल पड़ गया और दूसरा कहा कि संतान भी नहीं है। किसके पास ये घटनाएं घट रही है? मिथिला नरेश जनक, जिसके लिए कहा जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी, इतना बड़ा आत्मज्ञानी, और उसके साम्राज्य में अकाल, उसके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं। तो ये किस तरफ इशारा है कि आत्मज्ञानी को संतान प्राप्ति नहीं, आत्मज्ञानी को अकाल फेस करना पड़ रहा है? हाँ? और फिर सलाह किसने दी है? तो देवर्षि नारद ने दी है। देवर्षि नारद कौन है? तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। मतलब मानस पुत्र माना, और किसके मानस पुत्र है? ब्रह्मा के। मतलब कौन है? ब्रह्मा कुमार है। समझ रहे बात? मतलब कौन है वो? देखो, राजा का बेटा क्या कहलाएगा? राजकुमार। अभी मिथिला के राजा की बेटी है तो मिथिलेश कुमारी बोला ना आखिर उसके लिए। हाँ, जनक नंदिनी, जनक की बेटी है तो जनक नंदिनी, जनक सुता, जनक पुत्री, भूमि से पैदा हुई तो भूमि जा, भूमि पुत्री। ऐसे ही अगर वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है तो उन्हें क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कहेंगे। तो ब्रह्मा कुमार ने उसे सजेस्ट किया, किसको? राजा जनक को, जो क्या है? आत्मज्ञानी है। तो यहां पर राजा जनक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके जीवन में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान तो आ गया है। हम सब आत्मा है, 7 days कोर्स कर लिया, आत्मज्ञान पता हो गया है, परमात्म ज्ञान भी पता हो गया है। परंतु जैसे आज बाबा ने कहा, देव पद की प्राप्ति में विघ्न क्या आ रहे हैं, दैवी गुणों की धारणाएं कितनी हुई है और नहीं हो रही है तो क्या विघ्न आ रहे हैं। तो संतान नहीं होना मतलब आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप जीवन में क्या होनी चाहिए, दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए। दादी जानकी अपने अनुभव में हमेशा बहुत फलक से ये बात कहती थी क्लास में कि हमको किसी ने पूछा तुमने शादी की है, तो कहा मैं फलक से कहती हूँ हाँ, क्या है तुम्हारे पति का नाम, किससे की है, तो कहा शिव साजन से की है। अच्छा तुमको बच्चे हैं, कहा हाँ, बोले कितने बच्चे, कहा दो, कौन से बच्चे, बोले एक सुख एक शांति। समझ में आ रही बात, तो गुणों को ही क्या कह दिया, संतान कह दिया। और जैसे कहा अकाल माना सूखापन, जब जीवन में अगर गुण नहीं हो दैवी गुण तो हमारा आध्यात्मिक जीवन सूखा सूखा हो गया ना, वो आध्यात्मिकता का दर्शन हमारे जीवन से, वो तो जब आप चेयर पे बैठ के किसी के साथ आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तब समझ में आएगा किसी को कि हाँ इसके पास आत्मज्ञान है। लेकिन आप किसी के पास बैठे भी नहीं हो, चलते फिरते आपके जीवन से वो अध्यात्म का तेज, वो आध्यात्मिक गुण हर कर्म करते हुए फ्लो हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, अपने आप लोग समझेंगे ये व्यक्ति आत्मज्ञानी सच्चा आत्मज्ञानी है। और अगर नहीं है मतलब अकाल पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो ज्ञान तो है पर गुणों का अकाल है। और तब कहा गया कि तुम एक यज्ञ रचो, और यज्ञ रचा, यज्ञ रचने का मतलब क्या, यज्ञ में क्या करते हैं, आहुतियां डालते हैं। 7 days कोर्स किया तो बताया ना, ये भी एक यज्ञ है, परमात्मा ने आके यज्ञ रचा है। उस यज्ञ में तो फिजिकल वस्तुएं मटेरियल डाले जाते हैं, परमात्मा जो यज्ञ रचता है उसमें क्या हमको डालना होता है, कौन सी आहुतियां डालनी होती है, हाँ, अपनी कमी कमजोरियां, अपने विकारों का दान ही ये सच्ची आहुतियां होती है। और कहा आहुति होने के बाद फिर यज्ञ की समाप्ति में हल चलाना है, और जब हल चलाया है तो चलते चलते अटक गया, क्योंकि जहां पे चला वहां के भूमि पर से जो मिट्टी थी वो उथली तो सही ना, उथली या नहीं उथली, उथली। तो यहां पर भी सिर्फ हमने 7 days कोर्स कर लिया, सिर्फ हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज हम अमृत वेला कर रहे हैं, रोज हम नुमाश्याम का योग कर रहे हैं, हम ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं बताई गई है, शुद्ध भोजन करना, ये सब हमने जीवन में लाया है, परंतु वो छटा, वो अदा आध्यात्मिकता की हमारे जीवन से ऐसे बिखरे, ऐसे महके कि जाने अनजाने भी कोई हमारे पास से गुजरे उसको महक का एहसास हो जाए, तब हम कहेंगे हम सच्चे आत्मज्ञानी हैं। सच्चे माना ज्ञान भरपूर है लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी, एक होता है थ्योरिटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। स्कूल कॉलेज में भी जब विज्ञान के विषयों का हमने अध्ययन किया तो पहले प्रैक्टिकल थियरी पढ़ा दी जाती थी, फिर लेबोरेटरी में लेकर जाते थे और वहां पे उसका प्रैक्टिकल दिखाया जाता था। ऐसे ही तो कहा कि राजा जनक को जो अकाल पड़ा तो पहले तो बहुतों से वार्तालाप की जाती है ना कि आखिर भी क्या है, तो कहते हैं उनको ये भी कहा गया कि राजा जनक तुम्हारे राज्य में ना बुद्धिजीवी लोग तो बहुत है पर श्रमजीवी नहीं है। समझ में आई बात कि बुद्धिजीवी माना बुद्धि के आधार से तो आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, सब कुछ इतना अच्छी से हमने समझ लिया है, इतना अच्छी से सुन रखा है, समझा है कि यहाँ पर बैठा हुआ भाई या बहन भी किसी टॉपिक पर बोलेंगे तो आप शायद बोल सकते हो बहन जी ने, भाई जी ने ये वाली पॉइंट मिस की है, हमें तो वो भी पॉइंट पता है, क्या इनकी क्लास में क्या था ये तो सब पता था हमको। इतना सभी ने ज्ञान सुन लिया है, समझ लिया है, बट कमी कहाँ आ रही है? श्रम करने में। और श्रम का मतलब प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करने में। तभी उसको कहा गया बुद्धिजीवी तो बहुत है पर श्रम का अभाव है, कर्मठता छोड़ दी गई है, कर्मठता भुला दी गई है। जो ज्ञान है उसके प्रति कर्मठ बनो, उसको प्रैक्टिकल में लाने की चेष्टा करो। और तब कहा कि हल चलाना पड़ेगा, मतलब श्रम करेंगे ना, और श्रम करना जैसे हल में भी हल चलाया तो क्या हुआ, मिट्टी उथली। अब जैसे आत्मज्ञान जो हमें मिल चुका है, हमें बहुत अच्छी से पता है कि आत्मा सच्चित आनंद है, पता है ना, ज्ञान पूरा अच्छी से पता है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। आत्मा के पास जो आनंद है वो कैसा आनंद है? इटर्नल है, शाश्वत है। आत्मा के पास जो ज्ञान है वो कैसा है? हाँ बाबा कहते ना सागर है, मतलब बाबा सागर है और मैं गागर हूं, और हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उस सागर से जब मैं जुड़ूंगी उससे जो मुझे मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो मेरे जीवन से सदा वो हैप्पीनेस, वो आनंद की अनुभूति मैं खुद भी करूं और लोगों को भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं है, पर बाबा कभी कभी पूछता है ना, सदा है या कभी कभी है? बाबा अंडरलाइन कराता है सदा या कभी कभी। अगर कभी कभी है तो वो दुनिया वालों में भी वही है ना, कभी कभी तो वो तो भौतिकता से भी खुशी अनुभव कर लेते हैं ना, तो हमारे पास फिर और उनमें क्या अंतर हुआ? तो सिर्फ इतना ही अंतर हो गया कि वो आत्मज्ञान से वंचित है और हम आत्मज्ञान से भरपूर हैं, पर हमारे पास आत्मज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि तक सीमित है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अभी भी कमी है। और इसीलिए हमने पहले दिन आपको कह दिया था कि यहां पर जो भी क्लासेस होगी ना उसमें आपको नया कुछ भी नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस पढ़ा के पूरा हो गया है। लेकिन क्या कराया जाएगा इस क्लासेस में? उन्हीं उन्हीं बातों को फिर दोहराया जाएगा। शायद उस दोहराव में, उस रिपीटेशन में कोई बात जो आज तक समझ में नहीं आई थी समझ में आ जाएगी। और वो समझ मुझे प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करने की मेरे भीतर एक उत्कंठा को जगाएगी। तो ज्ञान होना काफी नहीं है, लेकिन उत्कंठा हो कि उसको प्रैक्टिकल करूं। और प्रैक्टिकल करूं का मतलब क्या? बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान और योग, दूसरा शब्द बाबा देते ज्ञान विज्ञान, ऐसे बोलते हैं ना बाबा, और विज्ञान क्या? योग। क्योंकि योग क्या है? योग जो ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल। ज्ञान मिला कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूं, ज्योतिबिंदु हूं, परमात्मा भी मेरे पिता ज्योतिबिंदु है, वो गुणों के सिंधु है और मैं गुणों की गागर हूं। अब हमें क्या करना है? अपने आप को उससे कनेक्ट करना है और कनेक्शन से उसकी एनर्जी मेरे में भरेगी और मैं आत्मा भरपूर हो जाऊंगी। तो ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तभी कहा ना योग माना विज्ञान, और इसी को कहा श्रम। कि बुद्धिजीवी तो बहुत है, श्रम जीवी का अभाव हो गया है, श्रम के प्रति अकर्मठता आ गई है। और वैसे भी हम भी देखेंगे ना, ज्ञान की क्लास में हम बहुत रुचि के साथ बैठते हैं, बहुत रुचि के साथ, और योग एक घंटा करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे? कुछ कमेंट्री तो चला होगा, ऐसे बैठे बैठे क्या करेंगे? समझ में आ रही बात? तो वो उत्कंठा होनी चाहिए उस योग के प्रति। जब हल चलाया है तभी मिट्टी उथली है और तभी पता चला है कि यहां पर कुछ है, तब उसको निकाला गया और तब उसमें से वो निकली है और इधर से जल वृष्टि हुई है। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? कि हम आत्माएं ओरिजिनली देखा जाए तो देखो बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्माएं सात गुण बताते हैं ना, ओरिजिनल संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल गुण, कि आत्मा शुद्ध स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये सब आपको पता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक नए जिज्ञासु को अगर ये बोलते हैं, जैसे जिज्ञासु सेंटर पे आते हैं, सेवा केंद्र पर आते हैं, और वो तो इस भाव से आते हैं कि जीवन में बहुत अशांति है, टेंशन है, और सुना है ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से शांति मिलती है, तो मैं भी जाके आता हूँ। और वो आता है और हम उसको कोर्स कराते हैं, तो वो कहता है बहन जी मेरे को ज्ञान नहीं सुनना है, मेरे को ना बहुत भीतर में अशांति है, आप मुझे कुछ शांति का अनुभव करा दो, कोई मेडिटेशन करा दो। बहन जी कहती है वो मेडिटेशन आप कर सको उसके लिए तो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप अशांत हो ही नहीं, आप तो हो ही शांत स्वरूप आत्मा। कहते हैं ना, कहते नहीं कहते हैं? अब वो जिज्ञासु कहता है बहन जी मैं भीतर में अशांति से भरा हुआ हूं और आप मुझे कहती हो कि आप शांत स्वरूप हो, आप अपने आप को बार बार आत्मचिंतन दो, तो ये अपने आप के साथ चीटिंग करना नहीं होगा कि मैं अशांत हूं और मैं अपने आप को कहूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं? पूछता है, वो चीटिंग नहीं होगा? क्या कहते हो आप, चीटिंग करना है कि क्या है ये? हाँ, क्या चीटिंग कर रहे हैं? कहते, हम कहते चीटिंग नहीं है, ये आपका ओरिजिनल स्वभाव है जिसको आप भूल भी चुके हैं और जिसको आप क्या कहेंगे, खो भी चुके हैं। खो झुकना मतलब जिसको आपने लंबे समय से यूज नहीं करते हैं तो आप उसको लूज कर लेते हैं ना। एक जमाना था जब फोन होते थे सिर्फ लैंडलाइन, तो हम नंबर याद रखते थे। स्मार्टफोन के जमाने में नंबर भी याद नहीं करना पड़ता है, तो जो मेमोरी थी हमारे पास याद करके रखने की, अभी दूसरे के तो छोड़ो, खुद का ही नंबर याद नहीं रहता। क्योंकि जो मेरे पास कैपेसिटी है मेमोराइज करने की, याद करने की, सुविधाएं इतनी मिल चुकी है कि उस सामर्थ्य का हम यूज भी नहीं करते हैं, और यूज नहीं करते हैं तो उसको लूज करते हैं। परंतु सामर्थ्य अभी भी अंदर में पड़ा है, सुषुप्त फॉर्म में, अपने डारमेंट फॉर्म में है जरूर। तो ऐसे ही जो सीता कहा, सीता मतलब कहते हैं ना भक्ति, सीता मतलब कहते हैं भक्ति, कोई कहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग के अंदर भी कोई वेदांति कहे जाते हैं, कोई भक्तिवान कहे जाते हैं, अलग अलग बातें होती है। तो सीता का वर्णन कईयों ने कहा सीता माना शांति, कईयों ने कहा सीता माना भक्ति, किसी ने कहा सीता माना मुक्ति। अब भक्ति माना क्या होता है? भक्ति माना प्रेम परायणता, प्रेम में समर्पित हो जाना। तो वो गुण अपने अंदर, तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी भी बनना है। और हम सचमुच प्रेमी बने हैं या नहीं बने हैं, इसकी निशानी क्या? जो प्रेमी होता है वो समर्पित हो जाता है, वो शरण में चला जाता है, शरणागति स्वीकार करता है सामने वाले की, जिसके प्रति उसका प्रेम है, उसकी शरणागति में वो चला जाता है। अब हम देखें अपने आप को, क्या इतना प्रेम उसके प्रति हमारे अंदर जागा है? बिना प्रेम के उसके साथ कनेक्शन मुश्किल है। इसीलिए भक्ति मार्ग में वो बताते हैं ना, उद्धव क्या था? उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था, और गोप गोपियां ज्ञान में शून्य, लेकिन भरपूर किस में है? प्रेम में भरपूर है। तब कृष्ण को कहना पड़ा, क्योंकि वो ज्ञानी था ना, और इसीलिए संदेश उसी के थ्रू भिजवाया था गोपियों के पास। और जब उन्होंने देखा कि गोपियां उसके कृष्ण के प्रेम में कैसी पागल है, तब उसको प्रेम का कुछ महत्व समझाया, वरना तो वो सिर्फ ज्ञानी ज्ञानी की बातें कर रहा था। यहां पर भी अध्यात्म में जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वो उत्कंठा, वो प्रेम, वो समर्पण उसके प्रति। एक होता है समझने तक ज्ञान का यूटिलाइज करना, कि बातों को मुझे पहले अच्छी से सारा समझना है, वहां तक बुद्धि का प्रयोग होता है। लेकिन एक बार जब समझ पूरी आ गई, उसके बाद बार बार बुद्धि का प्रयोग नहीं, उस बुद्धि का समर्पण। जैसे देखो, आप लड़का भी देखने जाते हैं ना, या लड़का या लड़की, पहले तो सारी बातें छानबीन की जाती है, छानबीन सब कुछ करके जब फाइनली तय कर दिया गया, अब तो एक दूसरे के प्रति क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं ना, वो समर्पित भाव आ जाता है ना एक दूसरे के प्रति। पहले छानबीन की, तब तक वो सब नहीं था, भाई मेरे लायक है भी या नहीं, ऐसे कैसे मैं किसी के प्रति समर्पण कर दूं। तो पहले खूब छानबीन कि मेरे योग्य है भी या नहीं। लेकिन एक बार सब कुछ जब तय हो गया, जब उसको स्वीकार कर लिया, अब उसके प्रति समर्पण। तो बुद्धि का इस्तेमाल ठीक है, बाबा ने ज्ञान की बातें सारी बताई, वहां पे इस्तेमाल कर लिया। अब फेथ बैठ गया या नहीं, विश्वास श्रद्धा उसके प्रति जागी या नहीं जागी। ज्ञान तो समझ में आ गया, अब समझने के बाद वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम जितना गहरा होगा, तो ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये प्रेम, यही तो श्रम है, यही तो पुरुषार्थ है हमारा, यही तो हल चलाना है। तो ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये विश्वास क्या करेगी पता है, कि जैसे कहा कि एक तरफ का बाबा कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूप हो, कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं बाबा तुमने ही तो पुकारा है मुझे कि हे पतित पावन आओ और हम पतितों को पावन करो। बाबा आके कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूप हो, और कहता है मैं तुम पतितों को पावन बनाने आया हूं। समझने की बात है या नहीं है, आके कहता है तुम पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुमने मुझे पुकारा है, फिर कहते बच्चे तुम शुद्ध स्वरूप हो। अरे बाबा आप आए हो हम पतितों को पावन करने, तो हम तो पतित है, आप हमें शुद्ध स्वरूप बोल रहे हो कैसे, कैसे बोलो। हाँ जी, लक्ष्य हो गया। देखो ये बल्ब चलता है ना, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट कांच की कवरिंग के अंदर होता है। जब स्विच ऑन करते हैं कहां से प्रकाश आता है, किसमें प्रकाश आता है, फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, प्रकाशित कौन हुआ, फिलामेंट प्रकाशित हुआ है। और चूंकि प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, ट्रेवल करना, तो फिलामेंट में जो प्रकाश प्रकाशित हुआ है वो गमन कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, तो उसके रास्ते में कांच आ गया, उसके रास्ते में कांच आ गया। कांच क्रिस्टल क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, साफ है एकदम, तो उसमें से प्रकाश की किरणें बाहर आ रही है। तो हमको लगता है इस कांच से प्रकाश आ रहा है, ओरिजिनली तो प्रकाश कहां से आ रहा है, फिलामेंट से, और वो भी कब, जब स्विच ऑन हुआ है। तो जब स्विच ऑन नहीं था फिलामेंट वहीं था, ऐसे नहीं कि जब स्विच ऑन किया तब वहां के फिलामेंट पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ही चाहे हमें ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा है, तब भी आत्मा यही है, और जब हमें ज्ञान है कि हम आत्मा है तब भी आत्मा यही है। परंतु अब जब ज्ञान मिल गया है, अब हमारा काम है उसका स्विच ऑन करना। इसको ही कहा कि ज्ञान तो सुन लिया है, अभी श्रम करना है, जिसको अध्यात्म में कहा पुरुषार्थ करना है। हम श्रम शब्द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हल चलाने की बात है ना, वहां श्रम करना पड़ा ना, वरना तो आध्यात्मिक भाषा क्या है, पुरुषार्थ है ना, समझ में आ रही बात। तो अब ज्ञान मिलने के बाद अब मुझे पुरुषार्थ करना है, स्विच ऑन करने का, मैं आत्मा हूं। सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, जो भी हमारे गुण बाबा ने हमको सिखाया है। अब बात आती है, खड़े क्यों हैं पीछे भाई बहने, स्थान नहीं है, यहाँ जगह है, अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। अच्छा आपको जाना है, ठीक है, ऐसे ही आए हैं जिज्ञासावश, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि वो हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है, वो हमें चिंतन में, स्मृति में लाना है, ठीक है। अब कई भाई बहनों का अनुभव कहता है, बहन जी खूब चिंतन कर लिया मैंने, खूब स्मृति में ला लिया है, जब चिंतन करता हूँ योग में बैठकर स्मृति में लाता हूँ अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन बहन जी योग से उठने के बाद तो वही जो बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन में जिस प्रकार से जीते हैं वैसे ही होता है ऐसा। मैं ये नहीं कह रही कि सदा ऐसा होता है, पर ऐसा होता है, मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को। अब यहीं पर समझने की बात है कि जब मैंने स्विच भी ऑन कर लिया है, तो जब इसके केस में कहा कि स्विच ऑन किया, फिलामेंट प्रकाशित हुआ, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, तो गमन कर रहा था तो रास्ते में कांच आया, तो कांच ट्रांसपेरेंट था तो उसको भेद कर प्रकाश बाहर आ गया और कमरा प्रकाशित हो उठा, और उस कमरे में जो भी आए तो उस प्रकाश में अपने कारोबार वो कर सके, है ना, न कि और जो आए, मैं खुद भी, है ना, कमरे में प्रकाश है तो ही मैं काम कर पाऊंगी ना, सिर्फ आंख ही काफी थोड़ी है देखने के लिए, सिर्फ आंख अच्छी है उसे दिख जाता है, नहीं, रात में जब ट्रैवलिंग करनी होती है फोर व्हीलर से टू व्हीलर से, तो जंगल के रास्तों में शायद लाइट हो न हो, आंख भले मेरी सलामत है लेकिन लाइट ही रास्ते पर नहीं होगी तो दिखाई कहां से पड़ेगा, इसलिए गाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था होती है, भले वो छोटी सी व्यवस्था होती है कि तीन चार कदम तक रोशनी देता होगा या छह सात कदम, दस ग्यारह कदम जो भी, लेकिन जितने भी कदम तक है गाड़ी फिर आगे बढ़ती तो अगले 11 कदम तक फिर रोशनी, गाड़ी आगे बढ़ी और ऐसे करके हमारी ट्रेवलिंग अच्छी से हो जाती है। तो अब ये जो बल्ब है, अगर बल्ब का कांच अपनी ट्रांसपेरेंसी खो दे, उसके ऊपर धूल मिट्टी चिकनाई तेल ये वो सब चढ़ जाए, जैसे विशेष करके किचन में जहां छौंक लगते और ऊपर में अगर बल्ब लगा है, खूब सीटियां बजती है, खूब पकोड़े तले जाते हैं, खूब छौंक लगते हैं, महीनों हो गए हैं सफाई नहीं की है, क्या होगा, धीरे धीरे प्रकाश उसका कम हो रहा है, कम होते होते एक दिन आएगा प्रकाश लगेगा ही नहीं कि बल्ब जलाया है, अरे मैं अभी तो ड्राइंग रूम में बैठी थी वहां पे तो लाइट थी, यहां लाइट चली गई, फिर मैं झांक के देखती हूँ ड्राइंग रूम में, अरे वहां तो चालू, यहाँ क्यों नहीं हो रही चालू, शायद बल्ब खराब हो गया होगा लगता है। हम चढ़ते हैं ऊपर कि निकाल के दूसरा लगाते हैं, लेकिन निकालने जाते हैं ना तो हाथ पूरा गंदा हो जाता है, और चूंकि उसको निकालने गए तो हाथ में लगा तो जो हिस्सा हाथ का वहां लगा ना, वहां की गंदगी इधर आ गई और वहां थोड़ा सा क्लीन हो गया, वहां से प्रकाश बाहर आता है नहीं आता है? आता है। तो ये जो बात थी कि जमीन को हल चलाया, जमीन पर मिट्टी वहां से उथली और मिट्टी के उथलने के बाद वो डिबिया कहो, डलिया कहो, बॉक्स को चाहे जो भी नाम दे दो, घड़ा भी, कोई घड़ा कहते हैं, कोई बॉक्स कहते हैं, कोई डलिया कहते हैं, हाँ वो भी बोलते, कोई अगर डलिया बोलते, बॉक्स बोलते तो फिर सोने का बताते हैं। ये कहानियां अध्यात्म को, क्योंकि अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमात्मा को भी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो जिन चीजों को हम चर्म चक्षुओं से देख ही नहीं सकते, उनको समझे तो कैसे समझे? तो एक तरीका होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। जो चीजें पता है उसके आधार से अज्ञात को समझना। तो ये सब बातें तो समझ में आ रही है ना? ये बल्ब दिख रहा है, फिलामेंट है, वो समझ में आता है, उसमें कचरा लग गया तो अभी प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, वो भी समझ में आता है। अब यहां से हम समझ सकते हैं ना अंदर की बात की? नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं ना अंदर की बात को? तो ऐसे ही बाबा ने हमें ज्ञान में ये भी तो कहा ना कि 63 जन्मों से हम देह अभिमानी बन पड़े। 2 युगों तक तो नेचुरल सोल कॉन्शियस वाली जीवन जी हमने, पर द्वापर आरंभ होते ही, या यूं कहें कि देह अभिमान आते ही द्वापर आरंभ हुआ। हाँ, ऐसे ही कहेंगे ना कि जहां से देह अभिमान जागा वहां से समझो द्वापर शुरू हुआ। द्वापर माना ही दोपुर, कि आत्मा तो है ही, शरीर दो, आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन जीवन है, और पूरे 2 युगों तक सोल कॉन्शियस में जी रहे थे नेचुरल रूप से। यहां आते आते कॉन्शियस चेंज हो गई तो 2 हो गया ना, भी धर्म और अधर्म दोनों आ गया ना जीवन में। तो जब से देह अभिमानी बने वहां पर तो हम क्या थे? इच्छा मात्रम अविद्या थे। किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन में इच्छा नहीं थी। क्यों? जीवन में एक व्यक्ति को जो भी इच्छाएं होती है वो सब प्रचुर मात्रा में अपने आप प्रारब्ध के रूप में हम सभी के पास उपलब्ध था। अब उपलब्ध है तो इच्छा क्या करना है? उपलब्ध है तो इच्छा क्या करना है? भाई घर में डाइनिंग टेबल नहीं था तो इच्छा थी कि मुझे कुछ पैसे जोड़ के घर में डाइनिंग टेबल लाना है। अब डाइनिंग टेबल तो आ गया तो अभी इच्छा डाइनिंग टेबल की नहीं रह गई। हाँ, अभी ये हो सकता है कि अभी ये इच्छा होगी इससे बड़ा वाला डाइनिंग टेबल, इससे सुपर क्वालिटी वाला। समझ में आ रही ना बात? लेकिन सत्ययुग त्रेता में तो बाबा कहते हैं कि हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से न सिर्फ वस्तुएं, इवन रिलेशंस में भी जो आपस में प्रेम प्यार की लेन देन होनी चाहिए वो सब था। तो किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम देह अभिमान में आए वहां थे इच्छा मात्रम अविद्या, और यहां हो गए इच्छाओं के जनक, इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं पैदा होती गई। मन संकल्प करता गया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, क्योंकि वो प्रचुरता भी क्या हो गई? बाबा ने कहा ना सेमी डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि पवित्रता को हमने लूज किया, इतनी जो हमें प्रारब्ध मिली थी उसका आधार था हमारी पवित्रता, हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज। लेकिन हमने अपनी पवित्रता को खोया, सोल कॉन्शियस स्टेज को खोया, तो प्रकृति ने भी खेल खेला कि तुम इतने सुख के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते हो, तो इतने सुखों के अधिकारी भी नहीं रह सकते हो। और इसलिए फिर चूंकि प्रचुरता भी कम हुई, द्वैत जागा, छोटा बड़ा नीचा ऊंचा सब जागा, तो इच्छाएं जागृत हुई। अब ये बताओ, हमारे मन में तो ढेर सारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, ढेर सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन क्या सब पूरी होती है? सब पूरी होती है? तो जो इच्छाएं, जो संकल्प जागृत तो हुए, क्रिएट तो हुए, पर फुलफिल नहीं हुए, उनकी पूर्ति नहीं हुई, ऐसी सारी इच्छाएं हमारे चित्त में वास करती रहती है, उसी को कहा गया वासनाएं। चित्त वासनाओं से भरा पड़ा है और ये वासनाएं चित्त रूपी कांच के ऊपर वही काम करती है जैसे इस फिलामेंट के ऊपर जो कांच है उसके ऊपर हमारे छोंक का उड़ा हुआ तेल, चिकनाई, धुआं, जो भी कहो, ये सब उसके ऊपर। तो अब आत्मा भीतर में हमने स्विच ऑन किया, हमने कहा ना कि ये बल्ब यहाँ लगा है, स्विच ऑन करूं चाहे नहीं करूं, बल्ब तो वही है ना, फिलामेंट तो वही है ना। मुझे आत्मज्ञान हो या ना हो, बिना आत्मा के शरीर जीवन थोड़ी रह सकता है। तो ज्ञान ना हो तो भी शरीर को आत्मा चला रही है, और ज्ञान है तो भी वो आत्मा इस शरीर को चला रही है। लेकिन ज्ञान होने का फिर बेनिफिट कि अब मैं स्विच ऑन करूं, स्विच ऑन करूं तो प्रकाश फैले, प्रकाश फैले, प्रकाश के साथ साथ गुण भी वाइब्रेट हो। जैसे देखो चंद्रमा है, चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन प्रकाश के साथ साथ शीतलता देता है। सूर्य भी प्रकाश देता है लेकिन प्रकाश के साथ साथ गर्मी देता है। ऐसे ही आत्मा की चमक भी प्रकाश भी देगी और साथ साथ उसके जो सात गुण है वो भी वाइब्रेट करेगी। तो जब हम चिंतन कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उस चिंतन में हैं तो उसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कांच साफ नहीं है ना, कांच साफ नहीं है तो बाहर आने का रास्ता रुका हुआ है। जब तक वो बाहर आने का रास्ता साफ नहीं किया जाएगा तब तक वो नेचुरल हमारे से फ्लो नहीं हो सकती। यही तो हमको प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है हम सबको कि बहन जी चिंतन खूब करते हैं और जिस समय चिंतन करते हैं आधा घंटा एक घंटा कमेंट्री के साथ योग होता है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसे भी फेस करना पड़ता है। क्या फेस करना पड़ता है? अच्छे खासे ज्ञानी, आत्मज्ञानी जो दूसरों को सिखा रहे कि हम है ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और गुस्सा ऐसा किया जो देह अभिमानी भी नहीं करता होगा इतना किया है ना। तो कई बार शर्माना पड़ता है, लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारिया है, ये ब्रह्मा कुमार है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया, बुद्धि तो चला के बातें समझ ली है, लेकिन वो उत्कंठा, वो प्रेम, वो समर्पण अभी पैदा नहीं हुआ है। क्या उत्कंठा, वो क्या प्रेम? एक बार जब कहा ना, छानबीन टटोल के जब तय कर लिया कि हमारी इनके साथ शादी होने वाली है, अब जो आप चाहोगे वैसे हम अपने आप को ढालेंगे, ऐसा होता है ना? जो उसको नहीं पसंद वो हम सब अपने जीवन से। अब मेरा बाबा परम पवित्र और मैं आत्मा हूं, मैं भी पवित्र, लेकिन मैं तो देह धारण करने वाली आत्मा हूं। तो जब देह धारण करती हूं तो आत्मा जैसे देह के अंदर है, इस देह के अंदर भी चित्त के अंदर है, माने चित्त से कवर्ड है। जैसे कहा ना, फिलामेंट कांच से कवर है ना, फिलामेंट कांच से कवर्ड है और वहां से पास होके आएगा उसका प्रकाश। अब उसको मैंने खूब धूल मिट्टी चढ़ा के रख दी है, तो धूल मिट्टी निकालने का प्रयास करना पड़ेगा नहीं? उसी को कहा हल चलाना, और उसी को हल चलाना मतलब जो आपको हमने कहा था कि आपको 10 से 10:30 का टाइम, शाम को 5 से 6 का टाइम आपका अपना टाइम होगा, आपके अपने एकांत का समय होगा, कि जिस एकांत में बैठकर डेफिनेटली म्यूजिक चलेगा, गीत बजेंगे, बाबा के दिल चलेगी। करना क्या उसे एक घंटे में? कॉमेंट्री व्यक्ति की नहीं मिलेगी, बाबा की मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस एक घंटे में अगर सारा ही समय आप सुनते रहेंगे, अपनी चेकिंग कब करोगे? अपनी चेकिंग कब करोगे कि क्लासेस फिर रिवाइज करके मैं अनुभव में इस बात को रियलाइज तो करूं कि बाबा ये चाहते हैं और आज मैं यहां पर हूं, कितना फासला है? जो चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर क्या कमियां बाकी है जिसको मुझे निकालना है? वो एकांत का समय भट्टी में इसलिए दिया जाता है, वरना तो सुनने के तो काम आप अपने घरों पे भी करते हैं, और टेक्नोलॉजी ने जब से ऑनलाइन सर्विसेज दी है तो बहुत कुछ सुन लिया है ना, घर बैठे भी, बिना सेवा केंद्र जाके भी बहुत लोग घर बैठे ज्ञान सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का। न सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन राहत भी फील कर रहे हैं। सुनते सुनते भी तो राहत मिलती है, लेकिन फिर भी कहते बहन जी मुझे समझ में नहीं आता कैसे मेडिटेशन करना है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ABCD पढ़ी नहीं, सीधा एप्पल पढ़ लिया है, सीधा एरोप्लेन पढ़ लिया है ना? तो फंडामेंटल अभी क्लियर नहीं हुआ है, और इसीलिए उनको हमें कहना पड़ता है कि भल आपने TV के माध्यम से सुना है, लेकिन फंडामेंटल पहले अच्छी से समझ लो। ज्ञान का फंडा क्या है उसको अच्छी से समझो, यही कहते हैं। तो हम कह क्या रहे थे असल में कि ज्ञान तो बहुत सुन लिया है, घर बैठे भी, सेवा केंद्र पे जाकर भी, ऑडियोस वीडियोस क्या क्या नहीं टेक्नोलॉजी ने आज हमें साधन प्रदान किए हैं, लेकिन सुनने के बाद फिर हम अपने कारोबार में, अपने जिम्मेवारियों में लग जाते हैं, कहां समय है चेकिंग के लिए? इसीलिए बाबा ने आपको अवसर दिया कि मधुबन में आओ, हर प्रकार की जिम्मेवारियों से मैं तुम्हें मुक्त रखूंगा, सिर्फ दो ही जिम्मेवारी, एक भोजन की और एक भजन की, और भजन की माना ही इसके अंदर उतरना, झांकना, कौन सी कमी कमजोरियों के लेप छेप अभी भी इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, और उसको चेक करेंगे, रियलाइज करेंगे, तब जाके परिवर्तन का संकल्प आएगा। अगर मैं ये रियलाइज ही नहीं करती हूं कि मेरे में गुस्सा है, तो गुस्सा छोड़ने की बात ही कहां उठती है? हाँ, नहीं उठती ना। मैं रियलाइज ही नहीं करती हूं कि मैं अभिमानी हूं, तो क्या बात खड़ी होती है कि मुझे निर्माण बनना चाहिए, मैं पहले से निर्माण हूं, मैं तो ये मान्यता लगा के बैठी हूं ना। अरे बहन जी, आपकी वाणी में ना बहुत अभिमान झलकता है, पर मैं तो ये मान के चलती हूँ मेरी वाणी बहुत निर्मल है। तो मैं करेक्शन कब करूंगी, जब तक मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है। तो चेकिंग, अपने भीतर जाके चेक करो, रियलाइज करो। ये रियलाइजेशन ही काम करेगा, जैसे हल चलाया तो मिट्टी उथली, ये रियलाइजेशन ही काम करेगा वो चढ़ी हुई मैल को, मैल की परतों को खरोचने में। और जब वो खरोच के निकल जाएगी, कांच साफ हो जाएगा। तो स्विच ऑन भी किया है, सोर्स से कनेक्ट भी हुआ। क्योंकि स्विच ऑन करते हैं तो कई बार हम कहते हैं, योग में हम बैठते तो हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा स्विच ऑन तो करते हैं पर उससे जुड़ते नहीं है, है ना। कई बार ये भी शिकायत, उससे जुड़ने के लिए तो उसके जैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, उसके जैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। तो जब यहां से मैल उतरे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे आऊं ना मैं, तब तो जाके उसके साथ कनेक्शन हो। और तब जाके उससे जब कनेक्शन होगा, तो जब पहले तो खरोच निकली है, तो कहीं कहीं से वो किरण आ रही है बाहर, लेकिन मुझे तो क्या करना है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। मतलब कांच का कोई भी एकाध हिस्सा भी ऐसा न हो जहां पर वो मैल या मिट्टी जमी हुई हो। दिवाली की सफाई इसीलिए तो होती है, वरना रोज तो थोड़ी बहुत तो सफाई रोज करते ही है ना, परंतु थोड़ी बहुत रोज सफाई होते हुए भी दिवाली की सफाई करते करते कमर कैसी टेढ़ी हो जाती है, होती है नहीं होती है, एक के बाद एक, एक के बाद कहां से गंदगी निकलती रहती है, निकलती रहती। ऐसी अपनी भीतर में जाके खूब छानबीन करना है, मेरे में अभी भी क्या कमजोरियां है। जब ये रियलाइजेशन करेंगे, परिवर्तन के संकल्प करेंगे, और उस परिवर्तन का संकल्प लेकर उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो वो कनेक्शन जुट जाएगा। और जब वो कनेक्शन जुट जाएगा, पावर मिलेगी, फिर वो पावर जो मिलेगी और गहरी छानबीन करने की ताकत देगी। दिन प्रतिदिन ये साइकिल चलता रहेगा, और एक दिन ये चित्त रूपी कांच एकदम पारदर्शी बन जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं, जिस आत्मा की जितनी पुरुषार्थ की हुई होती है, उतना ही उसके जीवन से वो गुणों की महक फैलती है। आप कोई खुशबू उठाओ, फूल उठाओ, बहुत थोड़ी सी सुगंध है, कोई दूसरा, हाँ इसमें थोड़ी ज्यादा है, और कोई फूल को उठाया भी नहीं है तो भी, तो समझ में आ रही कि खुशबू का परसेंटेज भी कब बढ़ेगा, जब यहां पर सफाई का परसेंटेज बढ़ेगा। तब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज धीरे धीरे नेचुरल होगी, वो सोल की जो ओरिजिनल गुण है वो हर कर्म में, व्यवहार में वाइब्रेट होंगे, रेडिएट होंगे। और ऐसे करते करते जैसे हमारी दादियां, जिसके लिए कहा ना, क्या कहा आज का, इसका पहले का क्लास क्या था, टॉपिक क्या था, निमित्त भाव निर्मल वाणी निर्माण स्थिति। क्या चेकिंग करना, यही चेकिंग करना है। जब भी मैं कोई कर्म करती हूँ, मेरे में कर्तापन का अभाव होता है, क्योंकि निमित्त भाव मतलब ही कर्तापन का अभाव, या दूसरे शब्दों में कहें करण करावन हार करा, मैं करता नहीं हूं। तो चेक करें मैं कितने कर्मों में कर्तापन का अधिकार रखता हूं। तो वो क्या करेगा, मल चढ़ाते जाएगा, निर्मल वाणी, मेरी वाणी मल से युक्त माना भरी है या अभाव है मलिनता का, निर्माण स्थिति। कोई भी कर्म करे हर बार देह अभिमान जताती, मालूम नहीं मैं सीनियर हूं आपसे, आपने मेरे पूछे ऐसे कैसे कर लिया। ठीक है आप सीनियर हैं, लेकिन करेक्शन देते समय भी तो वो गुण वाइब्रेट करके देते दे सकते थे ना करेक्शन। समझ में आ रही ना बात? तो कितने हम निर्माण बने हैं स्थिति में, कितनी हमारे में निर्मल वाणी आई है, कितना निमित्त भाव है, ये भीतर में जा जाकर चेकिंग। दादियों ने वही तो किया, तभी तो दादी प्रकाशमणि का स्लोगन बन गया। हाँ, आज दादी प्रकाशमणि के जो कल हम उनका स्मृति दिवस मनाएंगे तो यही बातें बार बार सभी करेंगे। क्यों? क्योंकि दादियों ने अपने जीवन का इन चीजों को, इन बातों का स्लोगन यही बना के रखा, और तब जाकर दादियां भी हमारी बाप समान स्थिति को प्राप्त हुई। तो कल हम सभी दादी जी का स्मृति दिवस मनाएंगे। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि स्मृति दिवस के आप यहाँ पर मधुबन में हो, और मैंने जैसे कहा कि अतिवृष्टि आपके ग्रुप में ही बहुत हो रही है। हाँ, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा इशारा है, हल चल गया है। हाँ, हल चल गया है। तो वहां वृष्टि नहीं ना, यहां वाली योग तपस्या वहां जाके करना, फिर वहां पर भी वृष्टि हो जाएगी। तभी कहा ना कि ये टॉपिक लेने की हमको जो प्रेरणा आई आपसे ही आई, कि बिहार आया है, फिर गीत में हमने मिथिला शब्द सुन लिया, फिर इधर देखा कि मेघ भी बहुत अतिवृष्टि कर रहे हैं, तो हमने कहा अपने पुरुषार्थ को समझने के लिए मिथिला नरेश की कुमारी मिथिलेश काफी है हमें इस पुरुषार्थ की गहराई को समझने के लिए। अच्छा, ओम शांति।